السلام علیکم. آج جمعرات ہے، اپریل کی 20 تاریخ. پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے بلٹن کے ساتھ. چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال نے پورے ملک میں بے وقت انتخابات کے معاملے پر سماعت کرتے ہوئے ریمارکس دیے ہیں کہ عدالت 14 مئی کو پنجاب میں انتخابات کرانے سے متعلق اپنا فیصلہ واپس نہیں لے گی. وائس آف امریکہ کے نمائندے عاصم علی رانا کے مطابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے سربراہی میں جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے ایک ہی وقت میں انتخابات سے متعلق درخواست پر سماعت کی. یہ سماعت اب 27 اپریل تک ملتوی کر دی گئی ہے. جمعرات کو جاری سماعت کے لیے عدالت نے سیاسی جماعتوں کے سربراہان کو طلب کیا تھا. دوران سماعت چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ کسی نے عدالتی فیصلے کو چیلنج نہیں کیا، عدالتی فیصلے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے کہا کہ عدالتی فیصلہ واپس لینا مذاق نہیں ہے، فیصلہ ہٹانے کا طریقہ کار ہے، وہ 30 دن بھی گزر چکے ہیں. شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کا اجلاس 4 اور 5 مئی کو بھارت کے شہر گوا میں ہو رہا ہے. دفتر خارجہ کے ترجمان ممتاز زہرہ بلوچ نے بتایا کہ بلاول بھٹو زرداری اجلاس میں پاکستانی وفد کی قیادت کریں گے. بھارت نے پاکستان کو اجلاس میں شرکت کی دعوت دی تھی، لیکن پاکستان کے دفتر خارجہ نے کہا تھا کہ مناسب وقت میں اس دعوت نامے کا جواب دیا جائے گا. دفتر خارجہ کے ترجمان نے بلاول بھٹو زرداری کے دورے سے متعلق مزید تفصیلات نہیں بتائیں. پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی اسمبلی کے سیکرٹری نے بدھ کو رات گئے اسمبلی کے ہنگامی اجلاس سے بتایا کہ چودھری انوار الحق کے مقابلے میں کسی نے کاغذات جمع نہیں کرائے، اس لیے وہ بلا مقابلہ وزیراعظم منتخب ہو گئے ہیں. نئے وزیراعظم چودھری انوار الحق اسمبلی کے اسپیکر تھے. نیا عہدہ سنبھالنے کے لیے وہ اسپیکر شپ کے عہدے سے استعفی دے دیں گے. پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں وزیراعظم کے عہدے کے لیے گزشتہ کئی روز سے جوڑ توڑ جاری تھا. اس سے قبل پاکستانی کشمیر کے تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے وزیراعظم سردار تنویر الیاس کو کشمیر کی ہائی کورٹ نے برطرف کر دیا تھا. سعودی عرب میں ٹریفک کے حادثے میں 9 پاکستانی عمرہ زائرین ہلاک ہو گئے ہیں. حادثے میں ہلاک ہونے والے افراد کا تعلق پنجاب کے علاقے ننکانہ صاحب کے 2 خاندانوں سے تھا. رپورٹس کے مطابق دونوں خاندان عمرہ ادائیگی کے بعد مدینہ منورہ گئے تھے، جہاں سے ریاض جاتے ہوئے القسیم کے قریب ان کی گاڑی تیز رفتاری کے باعث الٹ گئی. امریکہ نے افغانستان میں برسر اقتدار طالبان حکام کے ساتھ لگ بھگ 2 برس سے جاری سفارتکاری میں تعطل کے بعد اب اپنی افغان پالیسی پر نظر ثانی شروع کر دی ہے. امریکی حکام طالبان کی حکومت کو جابرانہ قرار دیتے ہیں. یہ نظر ثانی ایسے وقت میں کی جا رہی ہے جب طالبان کی جانب سے خواتین کو اقوام متحدہ کے اداروں میں کام کرنے سے روکنے کے بعد اقوام متحدہ افغانستان میں اپنے آپریشنز کو مبینہ طور پر روکنے پر غور کر رہی ہے. امریکی محکمہ خارجہ کے ایک ترجمان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ امریکی حکومت طالبان سے رابطہ کاری کے اپنے طریقہ کار پر نظر ثانی کر رہی ہے. یہ نظر ثانی افغانستان میں خواتین اور لڑکیوں کے خلاف طالبان کے بڑھتے ہوئے سخت اقدامات اور امتیازی سلوک کے تناظر میں کی جا رہی ہے. واشنگٹن کی جانب سے سخت بیانات ایسے موقع پر آ رہے ہیں جب اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینتونیو گوتریس مئی میں مبینہ طور پر ایک اجلاس بلانے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، جہاں وہ طالبان کی سخت گیر پالیسیوں کو ختم کرنے کے بدلے میں طالبان کو جنرل اسمبلی میں نشست دینے پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں. افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے خصوصی نمائندے رمیز الکابروف نے ٹویٹس کے ایک سلسلے میں کہا ہے کہ افغانستان ایک اہم موڑ پر ہے और उसे इंसानी इमदाद की अशद ज़रूरत है। उनका कहना था कि ये इमदाद ख़वातीन में फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम और ज़्यादा अमवात से बचा सकती है। उन्होंने कहा कि सन 2023 में 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों की इमदाद और भूख, बीमारी और अमवात को रोकने के लिए $4 अरब से ज़्यादा अमरीकी डॉलर की ज़रूरत है, जबकि तालिबान हुक्काम ने कई ऐसे फैसले किए हैं जिन्होंने इंसानी हमदर्दी के लिए काम करने वाले कारकुनों की सलाहियतों को मनफी तौर पर मुतासिर किया है। लेकिन यह वक्त अफगानिस्तान के लोगों से मुंह मोड़ने का नहीं है, उन्हें सबकी यकजहती की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पूरी बैनुल अक्वामी बिरादरी को इस अमल को बरकरार रखने के लिए जो कुछ भी हो सकता है करना चाहिए। अफगानिस्तान के लिए यूनिसेफ के नुमाइंदे फ्रान एक्यूजा का कहना है कि अफगानिस्तान में खवातीन और लड़कियों के हकूक पर बढ़ती हुई पाबंदियों और कम होती हुई इंसानी इमदाद में यूनिसेफ अपनी बेहतरीन सलाहियतों के साथ हर मदद के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने यूनिसेफ के ट्विटर पर पोस्ट किए गए वीडियो पैगाम में कहा कि अफगानिस्तान में 28 मिलियन अफराद में से 15 मिलियन बच्चों को इंसानी हमदर्दी और तहफ्फुज़ फराहम करने की जरूरत है। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश की पुलिस ने मकतूल गैंगस्टर, सियासतदान और साबिक रुकने पार्लिमान अतीक अहमद की बेवा शाइस्ता परवीन को मोस्ट वांटेड करार दे दिया है। वो रूपोश हैं और पुलिस प्रयागराज और पड़ोसी अजला में उनको तलाश कर रही है। उसने कई मकामात पर छापे मारे हैं। तलाशी मुहिम में ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। पुलिस ने उनका सुराग बताने वाले को 50,000 रुपए के इनाम का ऐलान कर रखा है। पुलिस का दावा है कि अतीक के जेल में रहने के दौरान उन्होंने उनके ग्रोह को संभालने में अहम किरदार अदा किया। अतीक को जहां गॉड फादर कहा जाता था, वहीं शाइस्ता को गॉड मदर कहा जाता था। उनके खिलाफ 3 मुकदमात दर्ज हैं, जिनमें 2 फरेबदही के हैं और 1 कत्ल का मुकदमा है। यमन के हौसी बागियों के जेर कंट्रोल दारुलहुकूमत सना में माली इमदाद की तकसीम के दौरान भगदड़ के सबब 85 अफराद हलाक हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक भगदड़ का वाकया उस वक्त पेश आया जब एक स्कूल में सैकड़ों अफराद माली इमदाद लेने के लिए जमा थे। स्कूल में रमजान के आखिरी अयाम में 2 ताजरों की जानिब से खैरात तकसीम की जा रही थी। खबर रसां इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक इस दौरान हौसी एहलकारों ने हजूम पर काबू पाने की कोशिश में हवाई फायरिंग की तो एक गोली बिजली के तार से जा लगी और धमाका हो गया, जिसके बायस भगदड़ मच गई। हौसियों के जेरे कंट्रोल वजारत दाखिला के मुताबिक भगदड़ मचने का वाकया सना के मरकज में ओल्ड सिटी में पेश आया। वजारत के तर्जुमान अब्दुल खालिक गरीक ने कहा है कि मकामी हुक्काम के साथ तआवुन के बगैर रुकूम की बेतरतीब तकसीम भगदड़ का बायस बनी है। सूडानी अफवाज के हरीफ दस्तों के दरमियान जंगबंदी की ताजातरीन कोशिशें नाकाम हो गई हैं, क्योंकि दारुलहुकूमत खरतूम में गोलियां चल रही हैं। तशद्दुद को रोकने के लिए आलमी दबाव नाकाम होने के बाद जापान और हॉलैंड ने अपने शहरियों के मुमकिना इनखिलाक के लिए मुतासरा मुल्क के करीब ट्रांसपोर्ट तैयारे भेजे हैं। मिस्री फजाइया के तकनीकी माहरीन को सूडान की रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के जंगजुओं ने दारुलहुकूमत के शिमाल में वाके मेरोवी हवाई अड्डे पर हमला करने के बाद हिरासत में ले लिया था। सूडान की फौज के करीबी इत्तेहादी मिस्र ने कहा कि अहलकार वहां तरबियत और मुश्तरका मशकों के लिए मौजूद थे। मिस्र की फौज ने जुमेरात को एक बयान में कहा कि उसके तमाम तकनीकी अमले को फौजी ट्रांसपोर्ट तैयारों में सूडान से उनके घरों को वापस पहुंचा दिया गया। सूडानी फौज ने भी इनखला की तस्दीक करते हुए मिस्री अहलकारों की तादाद 177 बताई है। ये इनखला उस वक्त हुआ जब फौज और RSF ने दारुलहुकूमत की गलियों और मुल्क के दीगर हिस्सों में 5 दिन की लड़ाइयों के बाद बुध की शाम 24 घंटे की जंगबंदी शुरू की। एक दिन पहले इसी तरह की जंगबंदी मोहलिक झड़पों को रोकने में नाकाम रही थी, जिससे खतरा है कि मुल्क खाना जंगी की लपेट में आ जाएगा। अक्वामे मुत्तहिदा के इदारे बराए सेहत ने कहा है कि अब तक कम अज कम 330 अफराद हलाक और 3,000 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं, लेकिन मुमकिन तौर पर तादाद ज्यादा है क्योंकि बहुत सी लाशें अभी सड़कों पर पड़ी हैं। नेटो के सेक्रेटरी जनरल यान्स स्टॉल्टनबर्ग ने जुमेरात को यूक्रेन का गैर ऐलानिया दौरा किया। रूस के यूक्रेन पर हमले के एक साल बाद इस मुल्क का उनका यह पहला दौरा है। नेटो के सरबरा हलाक होने वाले फौजियों की यादगार पर गए और यूक्रेन के दारुलहुकूमत कीव में नुमाइश में रखे गए तबाहशुदा रूसी फौजी साजो सामान का जायजा लिया। स्टॉल्टनबर्ग ने नेटो के अरकान से यूक्रेनी अफवाज की मदद के लिए हथियार फराहम करने की हिमायत की एक बार फिर अपील की। रूस के इस हमले के जवाब में नेटो के हजम में इजाफा देखा गया है। इसमें फिनलैंड ने भी शमूलियत इख्तियार की और फिनलैंड के पड़ोसी मुल्क स्वीडन की इसी तरह की दरखास्त को हंगरी और तुर्की के अलावा नेटो के तमाम अरकान ने मंजूर कर लिया है। नेटो के अरकान डेनमार्क और हॉलैंड ने जुमेरात को ऐलान किया कि वो यूक्रेन के लिए 14 लेपर्ड 2 A4 टैंक खरीदने और उनकी तजदीद के लिए शराकत दारी कर रहे हैं। डच और डेनमार्क की वजारत दिफा ने कहा कि टैंक अगले साल के अवाइल में यूक्रेनी अफवाज को फराहम करने के लिए तैयार होंगे। डेनमार्क और नीदरलैंड 180 मिलियन डॉलर की लागत का इश्तराक करेंगे। यूक्रेन ने इत्तेहादियों से कहा है कि वो रूसी अफवाज के खिलाफ मुकाबला करने के लिए टैंकों जैसा भारी सामान फराहम करें। टैंकों के माहदे से एक रोज पहले यूक्रेन के वजीर दिफा ने ऐलान किया कि उनके मुल्क ने पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम वसूल कर लिया है। उनका कहना था कि रूसी फजाई हमलों के खिलाफ बेहतर दिफा के लिए मिसाइल सिस्टम की बे इंतहा जरूरत थी। अमरीका की मुख्तलिफ रियासतों में तबाही फैलाने के बाद तूफान ने अब वस्ती अमरीका का रुख कर लिया है और बुध को बोगलों, ताजा हवाओं, तेजतर हवाओं और जायलाबारी से वस्ती हिस्सों में कम अज कम 2 अफराद हलाक जबकि कई जख्मी हो गए हैं। घरों को नुकसान पहुंचा है और हजारों अफराद बिजली से भी महरूम हो गए हैं। नेशनल वेदर सर्विस ने बुध की शाम को ओक्लाहोमा, कैंसस और आयोवा में बगोलों और शदीद गरज चमक की वार्निंग्स जारी करना शुरू कर दी थी और लोगों को महफूज मकामात पर रहने को कहा था। वस्ती ओक्लाहोमा के इलाके शोनी और कोल में बुध की रोत आए गए बगोलों ने तबाही मचाई है। हुक्काम का कहना है कि मैकलिन काउंटी के छोटे से कस्बे कोल में कम अज कम 2 अफराद हलाक हुए जबकि मुतादिद अफराद जख्मी हैं। ताहम जख्मियों की तादाद अभी वाज़ह नहीं है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन मोहब्बतों और दुआओं को जारी रखिएगा। न्यूज एडिटर कमर अब्बास जाफरी के साथ खालिद हमीद को अब इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।